माया के तीन नामों की तरह मई दादा के भी तीन नाम थे, मजीता, मजीद और मई दादा। मजीता कहने वाले उनके सामने अल्लाह को प्यारे हो गए, मजीद या अरे माँ मजीद कहने वाले दो तीन बड़े बूढ़े उनके बाद भी कुछ दिन जिंदा रहे, बाकी तमाम लोगों के लिए, सारे शहर, सब जमानों के लिए वो मई दादा थे। खुद मई दादा का बयान था कि उनका असल नाम अब्दुल मजीद खान ईसुप जई है। चुनाचे पुलिस के मुशीरनामों, राशन कार्डों, सरकारी अस्पताल के कागज़ों और आखिर में कब्रिस्तान के रजिस्टर में उनका नाम अब्दुल मजीद खान यूसुफ जई लिखा गया। अगर उनका कोई वारिस होता तो लोहे मज़ार पर भी अब्दुल मजीद खान यूसुफ जई ही लिखा जाता, इसलिए कि यही उनकी वसीयत थी। मई दादा के बारे में मोहल्ले के धोबियों ने उड़ा रखा था कि वो ज़ात के हिंदू तेली हैं और उनकी मुसलमानियाँ तक नहीं हुई हैं। धोबियों की इस हरमजदगी की वजह खुद मई दादा ये बयान करते थे कि जवानी में धोबियों के सिलसिले में उनसे कुछ लग्जशें हुई थीं और ये बद जनावरों की औलाद अब इन बातों का इंतकाम ले रही है। धोबी मोहल्ले में उनकी तगोताज के बारे में मुझे बस इतना मालूम है कि जवानी में मई दादा देखने दिखाने की चीज़ थे और ये कि उनकी आखिरी महबूबा जुमरत धोबन 1965 में 70 साल की होकर मरी। मैंने डिब्बा कैमरे से खींची हुई बादामी रंग की एक बोसीदा तस्वीर भी देखी है जिसमें 18-20 बरस के मई दादा कान की लौ तक पहुंची हुई लोहा चढ़ी लाठी थामे, तारा सी आंखों में बहुत सा सुरमा भरे एक ज़बरदस्त पगड़ बांधे कैमरे को घूरते हुए दिखाए गए हैं। मई दादा की ये तस्वीर फुफ्फा मरहूम की खींची हुई है जिन्होंने शहर में सबसे पहले 1800 कुछ में बम्बई की किसी पारसी फर्म से कैमरे का VP पार्सल मंगाया था। ख़ानदान के स्कैंडलबाज बूढ़ों ने मशहूर कर रखा था कि मई दादा फुफ्फा अब्बा मरहूम और उनके यारों दोस्तों के लिए इख़वा की वारदातें किया करते थे और अरबाब निशात से राबते कायम कराते थे, मगर ये निरी खबासत थी। फुफ्फा अब्बा खरे पठान और हाफिज़ कुरान थे और मई दादा तो थे ही यूसुफ जई, ऐसी घटिया बातें उनके दायरा ख्याल में भी नहीं आ सकती थी। लोग कहते हैं कि फुफ्फा अब्बा ने उन्हें एक तपंचा खरीद कर दिया था जिसे चलाने की नौबत तो शायद कभी ना आई हो, मगर धमकाने के काम ज़रूर आता था। मैंने अक्सर मई दादा से सुना इसमें होशरबा किस्सा तोता मैना अनवार सहेली वगैरह ये सब ठीक है, मगर अंग्रेज़ी तालीम जो है ये आदमी को नामर्दा बना देती है। ये लफ्ज़ वो बुजदिल के मानों में इस्तेमाल करते थे और अक्सर बड़े तासुब से कहा करते थे, गज़ब खुदा का, जब से इन पठान बच्चों ने अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू की है इस ख़ानदान के लोगों ने कोई कत्ल ही नहीं किया। एक बार अब्बा ने ये बात सुन ली और उन्हें ऐसी डांट पिलाई कि सबसे 4 दिन तक रूठे रहे, किसी से बात नहीं की। आखिर 5वें दिन मुझे इशारे से बुलाकर राजदाराना अंदाज में कहने लगे, तेरे बाबा अलीगढ़ जाके ख़राब हुए, पहले ऐसे नहीं थे, भला ये भी कोई बात है, हमने कायदे की बात कही और बिगड़ गए बिला वजह। मगर ये तय था कि अब्बा को और हम सब बहन भाइयों को उनसे जितनी मोहब्बत मिलती थी दूसरों को उसकी आधी भी नसीब नहीं थी। वैसे मजमूई तौर पर वो पूरे कुटुंब कबीले के आशिक थे, मुझसे कहते थे कि मैं तेरे कुटुंब कबीले के साख सजर का मास्टर हूँ और ये कि ऐसा चारों खूंट साख सजर मैंने कहीं और नहीं देखा। साख सजर से उनकी मुराद शजर नसब होती थी, मगर चारों खूंट साख सजर क्या होता है ये न मैंने कभी पूछा न उन्होंने कभी बताया। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मेरे कुटुंब की हद तक मई दादा इल्मे इस्म नवीसी के माहिर थे। इस मरहूम ख़ानदान में बड़ों का तरीक़ेकार ये था कि जो ही लड़का अपना पूरा नाम लिखने के काबिल हुआ उसका दादा, ताया, बाप या चचा उसे शजर नसब की एक वसली थमा देते थे कि लो बेटा संभाल संभाल के इसकी 100 नकलें तो बना दो। जाहिर है कि किल्क और गाढ़ी सियाह रोशनाई से लंबे लंबे कागज़ों पर ये शाख शजर बनाए जाते थे। पिंसल, फाउंटेन पेन और फौलादी निब वगैरह से पुरखों के नाम लिखना सख्त बेअदबी बल्कि मुदाखलत फिद्दीन समझी जाती थी। उन्हें दुरुस्त तरीके से बनाने में महीनों लग जाते थे, मगर ये एक तयशुदा तरीक़ेकार बल्कि पैदाइशी जबर था जिससे बचना मुमकिन नहीं था। शाख शजर मुकम्मल हो जाते तो ख़ानदान का उस दौर का कोई बड़ा बूढ़ा लमडों को बुलाकर उनकी कारकर्दगी मुलाहिज़ा करता और तमाम कलेमे, अलहम्द शरीफ और चारों कुल सुनने के बाद पहले उस लड़के की मेन लाइन फिर ब्रांच लाइनें ज़बानी सुनता और 1 रुपया कलदार अता करता। दरमियान में भूल जाने का तस्वीर भी नहीं किया जा सकता था कि कई महीनों तक फुला मोहम्मद खां के बेटे फुला मोहम्मद खां और उनके बेटे फुला मोहम्मद खां ख्वाबों तक में तलवारें लिए टहलते फिरते थे। लेकिन अगर गलती से इन मोहम्मद खां के बेटे उन मोहम्मद खां की बजाय वो दूसरे मोहम्मद खां लिख दिया गया और दादा की नज़र पड़ गई तो समझो मारे गए। उंगलियों पर किल्क तकरीबन तोड़ दिए जाते थे कि सुअर मेरे नगर सगर दादा को वल्दुल हराम बता रहा है। हज़ार मील दूर और सैकड़ों बरस के बोध में ये पश्तून कबीला जो अपनी ज़बान भूल चुका था कागज़ों पर अपने नसब के तहफ़्फ़ुज़ की हारती हुई जंग लड़ रहा था। तो दूसरी औलाद नरीना की तरह इस अजियत से कि जो हमारे यहाँ खतनई की तरह लाजमी थी मुझे भी गुजरना पड़ा। इस अजाब से घबरा कर मैं बाकायदा रो पड़ता। तब ऐसे में मई दादा खुदा के बरवक्त फरिश्तों की तरह मेरी मदद को आते और इस्म नवीसी का मसला पानी कर देते, घंटों मेरे पास बैठकर गुत्थियाँ सुलझाते और हिम्मत बंधाते। खुद उनके शजरा नसब के बारे में सवाल करने का हमें कभी ख्याल ही नहीं आया, आया होगा तो धोबियों की उड़ाई हुई अफवाहों के तनाजुर में ये सोचकर कि मई दादा इस बारे में बहुत हसास हैं हम लड़कों ने कभी पूछा नहीं। एक बार किसी बुजुर्ग खातून ने खुश मिजाजी से पूछ लिया कि मजीद तू सबके शजर याद किए बैठा है, खुद अपना शाख शजर भी याद है तुझे? तो उतनी ही खुश मिजाजी से बोले हाँ भैया क्यों नहीं, सुनो शमसीर इबन शमसीर इबन शमसीर इबन अब्दुल मजीद खान यूसुफ जई। और एक ज़बरदस्त तहका मार कर हंसे। नादिर शाह दुर्रानी का ये तारीखी लतीफ़ा भी उन्हें चचाई ने सुनाया था। हम लड़कों के लिए उनकी जो हैसियत थी अगर उसे किसी एक दो लफ्ज़ी इस्तलाह में बयान किया जा सकता तो वो इस्तलाह थी माहिर पश्तूनियात की। वो हमारे लिए पठान सागा के आलम थे। मसलन ये कि पश्तो ज़ुबान जो दुनिया की पुरशिको ज़बानों में से एक है कुछ इस तरह बोली जाती है कि दगादा रोड़ादा पिस्ता बादाम रोड़ादा हींग। और हमें ये बहुत शानदार लगता था कि हमारे पुरख ऐसी ज़बरदस्त ज़बान बोलते हुए कुफ़ार के इलाकों में दर आए थे और उन्होंने सियाफाम भीलों और गोंडों के दरमियान खड़े होकर यह ज़बान बोली थी। कैसा रो पड़ता होगा मकामी आबादियों पर। अपने हम उम्र कुटुंब कबीले वालों में शायद मैं सबसे ज़्यादा पुरतखयल था। आंखें फाड़े मुंह खोले हुए मई दादा का बोला हुआ एक एक लफ्ज़ पीता रहता। और जब मेरी उम्र के दूसरे लड़के पतंगे उड़ाने और हाकियाँ खेलने में लगे होते मैं बाड़े की कोठरियों वाली छत पर चढ़ जाता और अपने कबीले के वतन तीरा से हज़ार डेढ़ हज़ार मील दूर अपने पश्तून अजदाद से ढाई तीन सौ साल परे टीन की नालीदार छत पर लेटा हुआ कबायली जंगे लड़ा करता था या बकौल मई दादा दर्रा खैबर में डंडम डंडा और तलवारम तलवारा किया करता। गर्मियों की छुट्टियों में ये मेरा पसंदीदा खेल था कि मैं काठ कबाड़ वाले तारीख कमरों में घुस जाता या तल घरों में उतर जाता और खेती बाड़ी के आलात में दबे हुए जंग खुर्दा आधे पौन हथियारों में से अपने मतलब की कोई चीज़ निकाल कर उसे अपने तौर पर सैकल करता। सो मैं अपने जंग खुर्दा सिपाही को बहाल करने की कोशिश में बहन भाइयों के रूबरू नाटक किया करता। पर दादा की कामदार मखमल की फटी हुई फरगल पहनकर कमर से आधी पौन तलवार बांधकर मैं पश्तो मुकालमात में जो जाहिर है मई दादा के ईजाद होते थे कुफ्फार को ललकारा करता। पश्तो रजत पढ़ा करता। मई दादा को ये नाटक और हथियारों की बहाली बहुत अच्छी लगती थी। वो घंटों हम लोगों के साथ इस खेल में शरीक रहते क्योंकि उनका बयान था कि वो हथियारों के दरमियान पैदा हुए हैं। सन 46-47 के पुराशोभ ज़माने में पड़ोस की गैर मुस्लिम रियासत से मुसलमान हिजरत करके हमारे शहर में आ रहे क्योंकि हमारा शहर मुसलमान अक्सरियत का शहर था, शायद अब भी होगा, कि ये पठानों की बसाई हुई रियासत थी। यही ज़माना था कि रियासती हुकूमत ने आतिशी असलाह और चंद इंच से ज़्यादा फल के हर धारदार आले के लाइसेंसों की सख्ती से पड़ताल शुरू कर दी। नए लाइसेंस जारी हो रहे थे मगर बड़े सिफारिशों के बाद, और लाइसेंस की सालाना फीस भी होती थी जो बड़ी ज्यादती की बात थी। मगर पहला मसला लाइसेंस का हुसूल था। मई दादा ने अम्मा की खुशामद कर करा के मामू से सिफारिश करवाई, वो पुलिस में कोई तोप अफसर थे और मई दादा का काम बन गया। जम्बिए का 12 आने सालाना का लाइसेंस जारी हो गया। मई दादा को ये 12 आने हमेशा खलते रहे मगर उन्हें ये इत्मीनान हो गया कि उनका जम्बिया अब कोई भान की घोड़ी गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। اور دوسروں کا تو ذکر ہی کیا. اماں نے اور ماموں نے سفارش گزارنے سے پہلے مئی دادا سے تقریباً قسم اٹھوا لی تھی کہ وہ کسی کو اس زمبیے سے دھمکائیں گے نہیں. نہ آئے میاں قسم لے لو, میں کسی ازل گرفتہ باندھ کے. مئی دادا سال میں ایک بار خود اپنا لائسنس اور میرے ابا تایاؤں چچاؤں پھپھاؤں خالوؤں کے اور میری اماں کے نام کے بندوقوں رائفلوں تیغوں تلواروں خنجروں کٹاروں کرچوں کے لائسنس اکٹھے کرتے اور فیس بھرنے کے لیے لائن لگاتے, اور واپس آتے تو مردانہ ڈیوڑی سے ہی بڑبڑانا شروع کر دیتے کہ غضب خدا کا ایک زمانہ وہ دیکھا تھا کہ گدی نشین تو نہیں تھے مگر فلاں محمد خان کے محل پہ پانچ پانچ توپیں چڑھی رہتی تھی, مزال تھی کوئی ازل گرفتہ بھان کا گھوڑا نظر بھی ڈال کے دیکھ سکتا, اور فلاں محمد خان بھی اگرچہ گدی نشین تو نہیں تھے مگر ون کے کنے 1600 ترواریں تھیں, اور وہ سروئیاں اور تیغے اور کھانڈے اور کرچیاں اور زمبی اور کٹاریں تھیں کہ رہے نام مالک کا. ابا کہتے تھے کہ مجید کو تو ریاست کے اسلحہ خانے کا داروغہ ہونا چاہیے تھا, ہتھیار دیکھ دیکھ کے اس کا خون بڑھتا ہے. پھر حکومت نے حکم جاری کیا کہ تمام ہتھیار سرکاری مال خانے میں جمع کرا دیے جائیں. مئی دادا نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ یہ خبر سنی, دو روز تک مغلظات بکتے رہے, غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو میرے دو تین بزرگوں کو اپنا ہم خیال کیا اور ابا کو مشورہ دیا کہ لائسنس والے ہتھیار بے شک جمع کرا دیے جائیں مگر کونوں کھدروں میں اور دیواروں میں پرکھوں کی جو امانتیں محفوظ ہیں ان کا کہیں کوئی اندراج نہیں, سو ان کو تیار رکھا جائے, زمانہ خراب ہے اور پٹھان بچے تو اچھے زمانے میں بھی تیار رہتے ہیں. ابا علی گیرین تھے, اصول پرست آدمی تھے, انہیں حکومت کے واضح احکام کی خلاف ورزی کسی صورت میں منظور نہیں تھی. پھر ان کا کہنا تھا کہ 150 برس کے دفن کیے ہوئے ہتھیار اب کھاد بن چکے ہیں, پھر اس تردد بیجا سے کیا حاصل, اس لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے. مئی دادا بظاہر مایوس ہو کر بیٹھ رہے مگر ہم لڑکے دیکھ رہے تھے کہ ان کے گرد و پیش اور ہمارے دوہرے دالانوں تل گھروں زینوں میں ایک پراسرار سرگرمی جاری ہے جس کا ابا کو کوئی پتہ ہی نہیں. لائسنس دار اسلحہ جمع کر دیے گئے, دو تانگوں میں کٹمب قبیلے کے دو چار بڑے اور مئی دادا ہتھیار لاد کر پولیس کے مال خانے پہنچے اور رسیدیں کٹوا کر خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے. میں اسکول سے آیا تو دیکھا کہ مئی دادا ڈیوڑی میں دیوار سے ٹیک لگائے سر نیوڑائے اکھڑوں بیٹھے ہیں, یوں لگتا تھا اپنے کسی خون کے رشتے کو مٹی کے سپرد کرائے ہیں. دکھ اتنا گہرا اتر گیا تھا کہ آج مغلظات بھی نہیں سنا رہے تھے. پھر جو دو تین چار دن کے بعد میرے ایک تایا کے ہتھیار جمع کرانے مال خانے گئے تو مئی دادا لوٹ کے نہیں آئے. خبر آئی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا, کوتوالی خاص کے لاک اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مغلظات سے شغل فرما رہے ہیں. ہاں ہاں کر کے تقریباً پورا قبیلہ دوڑ پڑا. ویسے تو مئی دادا شاید ملازم تھے مگر مرزائی خیلوں کی ڈیوڑیوں کے پروردہ تھے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ دوسرے قبیلے کے ہی صحیح پٹھان تھے, وردیوں کے نرغے میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑا جا سکتا تھا. اماں تانگے میں بیٹھ ترنت اپنے پولیس بھیا کے یہاں پہنچی اور میز پر سروتا مار کر بھائی کو حکم دے دیا کہ ابھی اسی وقت مئی دادا کو گھر آ جانا چاہیے. میاں آج ہمارے اہلکار کو ایک بوڑھے کو بند کر دیا تم نے, کل ہمارے بچوں کو باندھ کے لے جاؤ گے, پرکھوں نے کیا اسی لیے اپنی تلواروں سے جنگل کاٹ کاٹ کے یہ ریاست بسائی تھی؟ آئے اس روز میری اماں کا جلال دیدنی تھا, بولتی چلی گئیں. غالب کے شاگرد نواب یار محمد خان رفت کی پوتی تھیں, ایک جید نواب زادے کی فکر مندی, ایک توانا شاعر کی طلاقت لسانی اپنے جوہر دکھا رہی تھی. ماموں کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر منجلی آپا پتا تو چلے کہ اسے کیوں بند کیا گیا ہے, سنیے تو میں بھیجتا ہوں کسی کو, آپ اندر تو چلیے کھانا تو کھا لیجیے. مگر اماں چٹان کی طرح ان کی مردانہ بیٹھک میں جمی رہیں اور جلال کے عالم میں بیٹھی چھالیاں کترتی رہیں. ماموں کا پورا گھر ایک ایک بسکٹ اور ایک ایک پیالی چائے پر صبر کیے انہیں گھیرے بیٹھا رہا. ماموں کو وردی پہن کر خود جانا پڑا. دو گھنٹے بعد مئی دادا ہماری جوڑی میں بیٹھے تھے اور کوئی دو درجن مرزائے خیلوں کو اپنی رویداد سنا رہے تھے. اجل گرفتہ اور وہ دوسری بات ہٹا کر جو میں سمجھ سکا وہ یہ تھا کہ جب وہ تایا کے ہتھیار جمع کرانے مال خانے میں پہنچے تو حوالدار سکھیا رام جو ذات کا تیلی ہے اور وردی پہننے کے باوجود کسی طرف سے سپاہی نظر نہیں آتا اس دن مال خانے کا انچارج تھا. مئی دادا اور سکھیا رام کی پہلی مشترکہ بدقسمتی یہ تھی کہ ڈیوٹی پر سکھیا رام تھا. اگر بیرا سنگھ ٹھاکر یا گلاب خان حوالدار ڈیوٹی پر ہوتے تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. پہلے تو سکھیا رام نے ہنس کر ان کی طرف دیکھا, دوسری واضح حرم زدگیاں یہ کیں کہ انہیں بڑے میاں کہہ کر مخاطب کیا اور چپراسی کے اسٹول پر بیٹھنے کی دعوت دی. मई दादा एक तरफ खड़े उसे घूरते रहे। आतिशफशां अंदर ही अंदर खोल रहा था। उसकी आखिरी और नाकाबिले माफ़ी बदमाशी, जिससे आतिशफशां का ढकना एक बूम के साथ उड़ गया, ये था कि उस तेली के बच्चे ने हमारे हथियारों में से एक हथियार उठा लिया और बेनियाजी से बीड़ी पीते हुए उससे अपनी पिंसल छीलने लगा। ये नवाब गौस मोहम्मद खां फतेह जंग बहादुर का पेशकब्ज़ था, जिसका कब्ज़ा संग यश्प का था, जिस पर संगतराश ने फूल पत्तियों के नक्श कुछ इस तरह उभारे थे कि लगता था मोम से ढाल कर निकाले गए। पेशकब्ज़ के एक चौथाई फल पर सोने के पानी से उनका नामे नामी दर्ज था और फारसी जबान में खबर दी गई थी कि यह हथियार एक ईरानी कारीगर ने बतौर ख़ास नवाब बहादुर के लिए तख्लीक किया है, जो ज़मीन पर खड़े होकर रूबरू शेर का शिकार किया करते हैं। सो पहली बात तो ये कि सुखी आराम जात का तेली था, और आखिरी बात ये कि बीड़ी पीते हुए नवाब गौस बहादुर जन्नत मकानी के पेशकब से पिंसल छील रहा था। मई दादा ने अजल गिरफ्ता या भान के कहकर जो एक जन्नाटे का थप्पड़ मारा तो हवालदार सुखिया की बीड़ी और पिंसल दूर जा पड़ी। फिर उन्होंने इस तेली के पौधे को इत्तला दी कि ये शेर बच्चों की मीरास है, तेरी तरकारी काटने वाली छुरी नहीं, और ये तेरे हाथ लगने से तो नजिस हो ही चुकी है, मगर मैंने सब्र किया, अब जो तू भान के घोड़े इससे पिंसल छीलता है अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा वगैरह। जाहिर है कि इसके बाद मई दादा को कोतवाली खास के लॉकअप में मुंतकिल किया गया। कोतवाली इंचार्ज बड़े चक्कर में था, मगर मेरे मामू ने अलीगढ़ से नफ्सियात में फाजिल की सनद खामखा तो नहीं ली थी। 10-20 मिनट में अपने तोप ओहदे की धौंस दिए बगैर बड़े प्यार से अपने उस मातहत अफसर को कायल कर लिया कि ये गुंडा गर्दी और फौजदारी से ज़्यादा तारीख की बाजी हारते हुए एक गैरतमंद कबीले की झल्लाहट और मजरू अना का मसला है। कोतवाली इंचार्ज जात का चौहान राजपूत था और तलवार बांधते हुए हारते हुए हाथों की तकलीफ़ को शायद समझता था। इलावाजी एक बेवकूफ़ गैर सिपाही हेड कॉन्स्टेबल की वजह से अपने अफसरान बाला के लिए मज़ीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहता था। हवालदार सुखी आराम को जवाब तलबी का परवाना मिला कि हर गाह हमारे इल्म में आया है कि तुमने रियासत से मुतल्लिक नहायत बेशकीमत नादिर और तारीखी अहमियत के हामिल एक हथियार को के जो तुम्हारी तहवील में वगैरह वगैरह वगैरह। सुखी आराम को लाइन हाजिर कर दिया गया। अब्बा ने मई दादा को आराम करने के लिए ज़मीनों पर भेज दिया, इसलिए भी ज़रूरी था कि वो हर कसो नाकस को हवालदार सुखिया साबिक इंचार्ज इस्टेट मालखाने के जवाल की दास्तान सुनाते फिरते थे। मगर किसे मालूम था कि मई दादा का तकरीबन जवाल भी हम लड़कों को देखना पड़ेगा। एक बात पर अब्बा उनसे सख्त नाराज़ हुए। बाड़े की एक कोठरी खाली कराई गई और मई दादा को पहली बार हमारी ड्योढ़ी से कुछ दूर छावनी जाना पड़ा। हुआ यूँ कि दादा के इंतकाल के बाद शायद पहली बार हमारी एक बहन कबीले से बाहर ब्याई गई। लड़का आला तालीम याफ्ता था, मगर उसका ताल्लुक किसी मारने धाड़ने वाले कबीले से नहीं था। शादी के बाद हमारे यहाँ के दस्तूर के मुताबिक दामाद को ले जाया गया कि वो मई दादा को सलाम करे और मई दादा उसे 2 रुपये सलामी के दें। जाहिर है कि वो उसके बुज़ुर्ग थे, कोई बूढ़ा उधेड़ उम्र का उस वक्त मौजूद नहीं था, इसलिए हम लड़कों को मुकर्रर किया गया कि दामाद को ले जाकर रस्म पूरी कराएं। मई दादा अलील थे, नए दामाद को देख कर मुस्कुराए, जीवट करके उठ बैठे। हमने दाएँ बाएँ तकिए लगा दिए, सलाम लेकर उन्होंने दामाद के सर पर हाथ फेरा, सलामी के 2 रुपये अता किए और फिर पश्तूनियात की बिसात फैला दी। 1.5-2 घंटे तक नया दामाद मुंह खोले मई दादा के इनकशाफात सुनता रहा। साख सजर पर एक शेर हासिल तबसरे के बाद मई दादा ने बताया कि ये मिर्जाई खेल बड़े जीवट वाले कुटुंब हैं, खूंखार इतने कि मजा ले उनकी तरफ टेढ़ी आंख से कोई देख ले, और ये कि जो 40-42 घर इस मोहल्ले में एक साथ चले गए हैं ये एक दूसरे से मरबूत हैं, हर घर ने दूसरे घर में एक खिड़की इतनी बड़ी निकाल रखी है कि एक सालिम आदमी मैं तलवार या रफल के गुजर सकता है, और अगर मोहल्ले के सिरे पर मिर्जाए खेलों के किसी घर पर हमला हो तो 10 मिनट में इस सिरे से उस सिरे तक 100-125 मुसल्ला पठान बच्चे सूरत हाल पर काबू पाने और हमलावर को तहस नहस करने के लिए जमा हो सकते हैं। तो ये फ़ायदा है इन मरबूत मकानों का। फिर इस तरह अजीज़ प्यारों में आपस में मेल मोहब्बत भी बढ़ती है। इसकी मिसाल मई दादा ने यूँ दी कि ये जो अपने बच्चों में यहाँ बैठे हैं तो इनके फुलाने परदादे ने इन्हीं के फुलाने परनाने को सिर्फ इतनी सी बात पर कत्ल कर दिया था कि दोनों एक जगह वलीमा खाने गए थे। परदादे पहले से मौजूद थे, कि परनाने आए, दोनों में जायदाद पर मामूली सा मुकदमा चल रहा था। वैसे कोई ख़ास बात नहीं थी, इन लोगों में नालिशें फौजदारियाँ होती रहती हैं, डंडम डंडा तलवारम तलवारा भी चलती रहती थी, किस लिए कि शेर के बच्चे हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो इनके परनाने जब वलीमे की फर्शी निस्त पर जाने के लिए पापोशें उतारने लगे तो इनकी एक पापोश उनके दादे की पापोश पर चढ़ गई जो पहले से मौजूद था, और नौवारिद पुरख की हरकत तो सकनात का बगौर मुशाहदा कर रहा था, पापोश का पापोश पर चढ़ना था कि पहले वाला पुरख चमक उठा और ख़बरदार कहकर तलवार का जो भरपूर हाथ मारा है तो दूसरे पुरख की गर्दन भुट्टा सी दूर जा पड़ी। दामाद के चेहरे से पसीना बह बह कर शादी की नई शेरवानी के कॉलर में जज्ब होता जा रहा था। वो दो तीन बार पानी पी चुका था और हद दर्जे बेचैन था, देर भी बहुत हो गई थी हम उसे जनाने में ले आए। दूसरे दिन तूफान फट पड़ा, मई दादा बीमार थे, उनसे तो अब्बा ने कुछ नहीं कहा। अम्मा के सामने गरजते बरसते रहे कि क्या मजीद का बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया, दामाद को इस कदर दहला दिया कि वो घर जाकर गुमसुम लेट गया, और लड़की से पूछता था क्या ये सब बातें सही हैं, और क्या तुम कातिलों खूंखारों की औलाद हो, क्या तुम्हारे यहाँ बात बात पर तलवारम तलवारा होती है, और पूछ रहा था तुम्हारे घर में अब कितनी तलवारें हैं, और क्या सब लोग अब भी वलीमे की दावतों में तलवारें बांध कर जाते हैं ताकि एक दूसरे को कत्ल करने में आसानी हो। हद हो गई आखिर, कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी, हर घराने में कुछ ना कुछ पागलपन होता है आखिर, तो क्या उसको इस तरह मुश्तहर किया जाता है लाहौल वाला को। हफ्ते भर बाद बाड़े में एक कोठड़ी तैयार कराई गई और मई दादा को वहाँ जाना पड़ा। ड्योढ़ी से दूर उनकी बीमारी ने शिद्दत इख्तियार कर ली, वैसे तो उन्हें हम सब घेरे रहते थे मगर वहाँ उनका दिल नहीं लगता था। उन्हें पता चल गया था कि दामाद वाले मामले में मंझले मियाँ खफा हो गए और इसीलिए उनको ड्योढ़ी से दूर कर दिया गया। बड़ी हसरतनाकी बाड़े और उसके गिर्द पेश पर छाई रहती थी। एक रोज़ कहने लगे, अब मजीद खां इस उपजई जमीन का बोझा बनता जा रही है, चल चलाओ का टेम है। वो अब्बा को बुलवा कर अपनी सफाई पेश करना चाहते थे। मैंने जाकर अर्ज किया कि मई दादा बहुत बीमार हैं, आकर देख लीजिए। अब्बा आए तो जैसे मई दादा खिल उठे, हकीमों वैदों के नुस्खों पर बातें करते रहे, अज़ल गिरफ्तार भान के वगैरह भी शुरू हो गया। फिर अचानक बड़ी चमकदार आवाज़ में जैसे अब्बा को कोई लतीफ़ा सुना रहे हों, कहने लगे, मंझले मियाँ वो दामाद वाले मामले में आप मुझको खफा हो गए, शायद इसीलिए मुझे यहाँ फिकवा दिया। अब्बा ने कुछ हूँ हाँ कर दी। मैं देख रहा था कि मई दादा की बीमारी से उनकी हसरतनाक की उनका लतीफ़ा सुनाने के अंदाज़ से जो ज़ाहिर है अब्बा को राज़ी करने की बहुत रिक्क़त अंगेज़ कोशिश थी, वो बहुत मुतासर हुए। मई दादा कहने लगे, मियाँ वैसे तो आप माशाल्लाह बाल बच्चे वाले हो, पर मेरे आगू के बच्चे हो, मेरी मसलहतें नहीं समझ सकते। वो जो यो कहते हैं ना कि गुड़बक कुस्तल दा रोजे अव्वल, तो मैंने साहब जादे को खबरदार कर दिया कि हाँ खबरदार पठानों से मामला है, अब साहब जादे कुछ चीन पटाख नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अब्बा ने उसी दिन मई दादा की ड्योढ़ी में बहाली के अहकाम सादिर कर दिए तो जैसे सूखे धानों पानी पड़ गया। मई दादा की हालत बेहतर होने लगी मगर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, ज़्यादा दिन चलते नज़र नहीं आते थे। अम्मा ने उनकी महबूबा जुमरत को उनकी देखभाल की इजाज़त दे दी। वो आकर मुँह धुलाती, कपड़े बदलवाती, अपने हाथ से दलिया खिलाती, पिरछ में उंडेल उंडेल कर चाय पिलाती। महीनों ये सिलसिला चलता रहा। अब्बा ने डॉक्टरों को दिखाया और कई तरह के इलाज बदलवाए मगर मई दादा फिर संभल न सके, गिरते ही चले गए। उनका आधा बिस्तर समेट दिया गया, चारपाई की बांध दो तरफ से खींचकर दरमियान में एक खला बना दिया गया, उसके नीचे तामचीनी का तसला रख दिया गया। हवाई ज़रूरी के लिए अब वो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रहे थे। जुमरत ने उनकी सफाई सुथराई की सब जिम्मेदारी संभाली थी मगर वो कुनबेदार औरत थी, रात में नहीं रुक सकती थी। रातों में मैं देखता कि अब्बा गर्म पानी के लोटे लिए कई कई बार ड्योढ़ी की तरफ जाते, वो अब्बा से खिदमतें नहीं लेना चाहते थे, और कई बार कमज़ोर सी आवाज़ में उनके एहतजाज करने और रोने की आवाज़ भी आती। अम्मा ने उनकी देखभाल के लिए अपने मायके से कोई मुलाजिम बुलवाने को कहा तो मई दादा ने सख्ती से मना कर दिया। मेरे अब्बा उनके सामने के बच्चे थे, बेटों की तरह थे, तो बेटों की बात ठीक है, मैं गैरों के सामने ढका घुला नहीं हो सकता, इससे तो अच्छा मुझे अस्पताल पहुँचा दो भैया। मगर सब जानते थे कि वो अस्पताल में दो घंटे भी नहीं निकाल सकेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं इस घर में मरना चाहता हूँ। वो कई कई घंटे गशी की हालत में पड़े रहते, दिन में जुमरत और हम लड़के, रात में अब्बा इम्कान भर उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करते थे, मगर सब थक चुके थे। और इस थकन और बौखलाहट में जुमरत को मई दादा की एक वाज़े हिदायत का ख्याल नहीं रहा। वो गशी की हालत में थे कि मैंने उन्हें ढका खुला देख लिया। मैंने देखा कि उनकी मुसलमानियाँ नहीं हुई। अपने छोटे से जहन में बहुत से सवालात लिए मैं खामोशी के साथ ड्योरी से चला आया। इस नई और अजीब बात की सनसनाहट मुझे चैन नहीं लेने देती थी। छत पर गया, बाड़े में टहला, अम्मा के पास बैठा, बहुत देर आंडे बांडे घूमता फिरा, मगर मई दादा बहुत बीमार थे और वो हम सबसे मोहब्बत बहुत करते थे। मैं फिर ड्योढ़ी में पहुंच गया। मैंने सुना उनके ठहर ठहर का गुस्सा करने और रोने की कमज़ोर सी आवाज़ आ रही थी। जुमरत ने शायद उन्हें बता दिया था कि क्या गजब हो गया है, भान की गोली मरते मरते कालख लगवा दी तूने, लड़के क्या सोचेंगे। फिर उनके रोने की आवाज़ आई। कुछ देर खामोशी रही। ठीक है, तेली का लमटा पठानों के पाले से पठान तो नहीं बन जाता। मैं अब ड्योढ़ी में नहीं रह सकता था, फिर बाड़े की तरफ निकल गया। तो क्या मई दादा सारी जिंदगी हमसे झूठ बोलते रहे? तो क्या मोहल्ले के धोबी ठीक कहते थे? ऐसा लग रहा था जैसे शक्कर का नाम लेकर किसी ने मुझे मुट्ठी भर रेत पकड़ा दी है। मगर ये बात मैं किसी के सामने कह भी नहीं सकता था। दो चार दिन वो और ज़िंदा रहे, मगर ये चार दिन गशी और बेदारी की भूल भुलैया थे। उनके इंतकाल के कई महीने बाद वो एक सवाल जो उस सनसनाहटों वाले दिन से बराबर मेरे साथ था, मुझे बेचैन किए हुए था। मैंने एक बारगी अब्बा के सामने रख दिया। अब्बा मस्जिद जाने के लिए ड्योढ़ी से गुजर रहे थे कि मई दादा की कोठड़ी के सामने मुझे खामोश खड़े देख कर रुक गए। आहिस्ता से मेरे शाने पर हाथ रख दिया और बोले, क्या बात है? मैंने बात बता दी। वो बहुत देर खामोश खड़े रहे, फिर आहिस्ता से बोले, वो कोई भी थे, तुम्हें बस एक बात याद रखनी चाहिए कि वो तुमसे मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि तुम अपने दादों परदादों की तरह इज्जत के साथ जीना सीख जाओ, समझी? जाओ अब खेलो। फिर वो जाते जाते गुस्से से पलट पड़े और सुनो, कौन खबीस कहता है वो मुसलमान नहीं थे, कौन कहता है पठान नहीं थे?